ओम शांति। आदरणीय रामनाथ भाई का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। संगम युग की महिमा, वास्तव में हम संगम युग पर जी रहे हैं, उसकी कितनी महिमा है और हमें कितना नाज होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि हमारा जन्म संगम युग में हुआ। इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय रामनाथ भ्राता जी। आप 40 वर्ष से ज्ञान में हैं और 35 वर्ष से आप मधुबन में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और जो धार्मिक विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं।
ओम शांति। आज आप और हम सभी इस बहुत बड़े डायमंड हॉल में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्यों कि अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए, है ना। इसलिए कहा, आज का टॉपिक भी रखा संगम युग की महिमा महत्व। तो देखना आप, अगर ये ज्ञान नहीं जानते थे हम तो हम कहां थे, कलयुग में थे। ज्ञान समझ लिया कि मैं आत्मा और हमारा बाप परमात्मा इस सृष्टि पर आज खास हम बच्चों से मिलने के लिए आने वाला है। तो भगवान जब आता है क्यों आता है, कलयुग को स्वर्ग में परिवर्तन करने के लिए आता है। इसलिए कहते हैं भगवान कौन, ही इज ए प्यूरिफायर, ही इज अ लिबरेटर। वो पतित आत्मा को पावन करता है। शिव बाबा कौन है, सुप्रीम सर्जन कहा, पाप कटेश्वर कहते हैं उसको। तो भगवान कब आता है, जब सारी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं बीमार होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए आता है। जैसे लौकिक दुनिया में देखो, डॉक्टर कब आता है, बहुत महामारी होती है, सब प्रकार के बीमारी फैल जाती है, तब ऐसे गवर्नमेंट डॉक्टरों को भेजता है कि वहां दवाई दिया जाए सबको। तो ये भगवान इस सृष्टि पर कब आता है ये जानना चाहिए। सारे कल्प के अंदर ये एक ही समय है जिस सभी आत्माएं पतित बन जाती है, तभी स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आता है। इसलिए एक ही भारत देश है, सारे विश्व में कहीं भी देखना आप शिव जयंती नहीं मनाते हैं। सिर्फ एक भारत देश ऐसा है जहां शिव स्वयं अवतरित होते हैं, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। और आज भी आप और हम इसलिए इधर आए हैं कि शिव बाबा, निराकार शिव बाबा कैसे साकार ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश कर गुलजार दादी के द्वारा हमको कैसे मिलेगा। साकार से नहीं, अव्यक्त मिलन है। और ये सारे कल्प में एक ही चांस मिलता है कि पतित आत्मा को पावन बनने का। अब आप पूछेंगे हम पतित है कैसे पता चला, पावन बनेंगे कैसे पता चलेगा, शरीर के अंदर अगर बीमारी है, किसी को बुखार आया कैसे पता चलता है, दूध में पानी है कैसे पता चला, थर्मामीटर है। अगर थर्मामीटर लगाओ तो पता चलता है कितना बुखार है। हर चीज की मापदंड है, मेजरमेंट है। तो अभी दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं सभी पाप आत्मा बन गए, तब कहते हैं शूद्र को बाप आकर के ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाता है, तो ब्राह्मण सो देवता है। तो हम पतित हो गए, क्या प्रूफ, अभी आप देखना हमको कितना बुखार है कैसे पता चलेगा। तो देख लो आप, जब हम रात को सोते हैं आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्नों में कौन आ रहा है, स्वप्न कहां से आए, दिन में ये व्यक्ति खराब है ये व्यक्ति खराब है दिखाई देता है, रात को जब सोते हो सामने कोई भी नहीं है, आंखें बंद करके सोए हो, तो स्वप्न बताते हैं मैं कौन सी ग्रेड की आत्मा हूं, मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, क्योंकि संस्कार से ही संसार बनता है। किसी के पास बहुत करोड़ों के धन है, संपत्ति है, हीरे है, सोना है, कोई भी अपनी संपत्ति नहीं कह सकता है, कोई भी जाते समय इसको ले जाने सकता है, तो हमारे साथ क्या जाएगा। आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो आप, हर सेकंड आत्मा के अंदर संचित होता है, रिकॉर्ड होता है। और ये आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, वो संस्कार आपको छोड़ नहीं सकता है, सदा ही आपके साथ जाएगा। ये हमारी अमानत है। तो आप देख लो हमारे बैंक में क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर कौन से संस्कार भरे हुए हैं। अगर अभी भी पांच विकारों के स्वप्न आते हैं तो हम कौन सी आत्माएं हैं? पुण्य आत्मा है। अभी भी आप देख लो सभा में इतने बैठे हैं, इसमें से एक भी पुण्य आत्मा है तो बताओ। आज से एक महीने के अंदर एक ने एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ उठाओ। आज से एक महीने पहले, आज के बाद शुरू होगा, एक महीने पहले के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल भी नहीं, एक दिन भी अगर गुस्सा नहीं किया है, ऐसे कोई पुण्य आत्मा है? तब प्रश्न आता है भगवान को क्यों आना पड़ रहा है, कि जब सभी आत्माएं बीमार हो जाते हैं तब उसको कहा सुप्रीम सर्जन आता है। कब आता है? संगम पर आता है। और बाबा ने ऐसी व्यवस्था बताया कि भगवान भी कौन है? भाग्य विधाता कहा, भाग्य बनाने की विधि बताता है। जैसे देखो साइंस ने या शास्त्रों ने या भगवान ने कोई ऐसे एक नियम नहीं बनाया अभी तक कि खेती में एक बीज बोलो तो 100 दाना लगते हैं, अगर एक बीज नहीं डालो बिना बोए हुए कुछ उग सकता है? ऐसे साइंस ने या भगवान ने ऐसे कुछ बनाया बिना बोए हुए कुछ उग जाए? नहीं। ये यूनिवर्सल एक नियम है कि हिम्मत का एक कदम आप रखो, भगवान 1000 कदम आपको मदद देगा। खेती में एक बीज बोलो तो 100 दाना लगते हैं, एक बीज आपको बोना पड़ता है। तो भगवान कौन? भाग्य विधाता कहा, भाग्य बनाने की विधि बताता है। अपने आप ऊपर से आपको कुछ देगा नहीं, विधि बताता है, बच्चे करना आपको है। इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम है, इट इज ए यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है। कौन सी? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो यहां आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया जा रहा है। जिसको भौतिक ज्ञान है, शरीर का हर नस नसों का ज्ञान है, उसको फिजिशियन डॉक्टर कहते हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, उसका ज्ञान इस दुनिया में, सारे यूनिवर्सिटी में जाओ आप, सारे शास्त्र देख लो, कहीं भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उसमें भी काज 5 प्रश्नों का ज्ञान नहीं है। तब भगवान को पढ़ाने के लिए आना पड़ता है। तो संगम पर भगवान क्यों आता है? अगर दुनिया में कहीं भी ज्ञान मिलता है तो भगवान की जरूरत नहीं, इस किताबों में मिलेगा, इस शास्त्रों में मिलेगा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है सारे विश्व के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लंगड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, किसी की दुनिया के कोने के हो, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और फ्री एडमिशन है। और पढ़ाने वाला कौन? तो इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं, फ्री एडमिशन है। क्यों? भगवान को कहा त्वमेव माता श पिता त्वमेव, कहते हैं मां बाप है वो, सदगुरु है वो, लेकिन शिक्षा देने आता है। तो क्या शिक्षा देता है? कि बच्चे पतित से, पतित अर्थात आत्मा और शरीर, ये दो चीजें हैं। आज तक सारे संसार ने, साइंस ने, सभी शास्त्रों ने हमको एक बताया कि सारे ब्रह्मांड के अंदर एक शक्ति है। वास्तव में सारे ब्रह्मांड के अंदर 2 शक्तियां हैं। ये शिव बाबा आके पढ़ाता है, जो दुनिया में अभी तक नहीं है। एक भौतिक शक्ति, एक फिजिकल एनर्जी, और एक है मेटाफिजिकल एनर्जी। एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा। तो उस आत्मा के ऊपर भी गीता में नाम आता है, स्वामी विवेकानंद ने भी आत्मा है कहा। लेकिन ये 5 प्रश्न है, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विस्तार से ज्ञान सुनाया जाता है। एक आत्मा क्या चीज है, आत्मा कहां से आती है, आत्मा इस शरीर में कहां रहती है,
आत्मा इस शरीर में रहकर क्या कर्म करती है, और आत्मा जब चाहे तब शरीर छोड़ के जा सकते हैं, शरीर छोड़ने की विधि क्या है, फिर शरीर छोड़ने के बाद यह आत्मा कहां जाती है। बच्चा जन्मते ही देख लो, लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, कौन करता है ये पता नहीं है, तो भगवान करता है। भगवान ऐसे करेगा? तो ये सारे ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कहा। इन पांच प्रश्नों का विस्तार से जवाब ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मिलता है। कोई आपको पूछेगा आप कहां गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, ऐसी एक सारे विश्व के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, इट इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। उसमें भी आध्यात्मिक ज्ञान में भी क्या, आत्मा के प्रति, आत्मा क्या चीज है। अभी तक दुनिया को पता नहीं, श्वास खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कहते हैं, कहने में आता है आत्मा है, कहां है वो आत्मा, आत्मा शरीर में कहां रहती है, आत्मा शरीर में रहकर क्या कर्म करती है। अगर आत्मा कुछ कर्म करती है तो आत्मा शरीर किस आधार से छोड़ती है। सभी का एक जैसा शरीर छोड़ना चाहिए, नहीं, किसी का एक्सीडेंटल होता है, किसी का और कुछ होता है, तो इसका कारण क्या है, इसको कहा कर्मों की गति। फिर शरीर छोड़ के जो आत्मा जाती है वो कहां जाती है, सबने कहा वो स्वर्ग में चला गया, कोई कहते आत्मा जन्म ही नहीं लेती दोबारा, एक ही जन्म लेती है, नहीं, तो भगवान को आके पढ़ाना पड़ता है, तब कहा वो ज्ञान का सागर है। इस दुनिया में कहीं भी ये ज्ञान नहीं है, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर संगम पर ही, इसके बाद नहीं मिलेगा, इसके पहले भी नहीं था। तो ऐसा एक समय है ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा अगर आप एक काम करते हो, उसका हिसाब किताब भी बताया, इस संगम पर एक सेकंड अगर आप इस ईश्वर की सेवा करते हो तो आपका एक का पदम गुना अर्थात एक जन्म के लिए निरोगी काया मिलेगा, हिसाब किताब भी बताया है। एक सेकंड ये शरीर अगर इस ईश्वर ने आकर के जो रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की आप अगर आप सेवा करते हो, क्योंकि भगवान ने आके कहा है मैं बच्चों को वर्षा देने आता हूं, कौन सा वर्षा हो, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, वो सभी को मिलेगा, जो भी भगवान के बच्चे सबको मिलना चाहिए, नहीं, तब कहा बच्चों को विधि विधान बताया है। तो ये भी संगम पर ही नियम लागू होता है, संगम का एक सेकंड जब स्वयं भगवान इस धरती पर आता है अपना वर्षा बच्चों को देने के लिए, पतित आत्मा को पावन करने के लिए आता है, तो उसकी विधि विधान बताता है। बच्चे तन निरोगी काया कैसे बनेगा, मैं ऊपर से दवा भेजेगा, उसकी विधि बताता है। हेल्थ वेल्थ कैसे आएगा, धन कैसे मिलेगा, हैप्पीनेस कैसे आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि अभी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो हमारे जीवन में वो सदा सुख, सदा निरोगी काया, सदा धन संपत्ति से संपूर्ण स्वर्ग, उसको स्वर्ग कहा। तो हम स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर हमको एक साल तक अनाज चाहिए तो खेती में एक बीज बोना पड़ेगा ना, और बोने की भी विधि है, बरसात जब आती है उसी समय बोना है। आप कहेंगे मैं उस समय बीमार था, उस समय मुझे नौकरी में छुट्टी नहीं मिली, बीज बोया नहीं है, तो खेती उगेंगी, किसको बताएंगे, तकदीर को बताना पड़ता है। तब कहते हैं भगवान जब आया था दुनिया में, लोग कहते हैं जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहा था तब आप कहां सोए थे, तब बाबा खास याद दिलाता ये संगम युग का एक वैल्यू है। सारे कल्प के अंदर हम खाएंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे जो अभी किया जाता है, इसलिए अभी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि अगर सारे कल्प में हमको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, शरीर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और धन संपत्तियों से भरपूर रहना चाहिए, मांगना न पड़े किसी से, और किसी प्रकार की हमारे शरीर के अंदर बीमारी न हो, सदा आत्मा खुश रहे, किसी प्रकार का दुख न हो, तो भगवान भाग्य विधाता आकर के ये विधि बताता है, बच्चे ये तीन बीज बोलो, तन ईश्वर की सेवा में लगाओ। धन कहां लगा रहे हो आप? तो भगवान की सेवा में लगाओ। क्यों? धन आपने लाया नहीं था ना आप ले जाएंगे, तो उसको अच्छे कार्य में लगाओ। मन सारा दिन में कहां लगाते हो? किसको याद करते हो? किसका चिंतन करते हो? मन कहां लगा हुआ है? तो मन जीत जगत जीत कहा, मन मेरे से लगाओ। गीता में भी कहा मन मना भव। तो आप पूछ लो 24 घंटे के अंदर मेरे मन में, मैं कितना समय बाबा से मन लगाता हूं, कितना मिनट सेकंड ये तन भगवान के सेवा में लगाता हूं, धन कितना मैं ईश्वरीय सेवा में लगाता हूं। क्यों? बाबा ने हिसाब बताया, अगर इस बैंक में आप पैसा रखते हो तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इस बैंक में रखो तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, विधान है। तो यहां भी संगम युग पर बाबा आकर के ये विधान बताता है, बच्चे तन मन धन एक सेकंड अगर ईश्वर के श्रीमत के अनुसार सेवा में लगाते हो तो एक का पदम गुना, अर्थात एक जन्म के लिए ये शरीर निरोगी काया होगा, धन संपत्तियों से भरपूर होगे, मन सदा हर्षित रहेगा। अभी आप गिनती करो कितना आप जन्म आपको चाहिए और कितना सेकंड मैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तन मन धन कितना ईश्वरीय सेवा में लगाता हूं। हिसाब है कि भगवान भी बहुत समझदार है, कहते भोलानाथ है लेकिन फिर भी चतुर सुजान है, विधि विधान है, संसार में इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल लॉ है, सृष्टि में भी नियम है। खेती में आपको एक बीज बोना पड़ेगा और उसमें भी नियम है, गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं उगेगा, आपको चावल का बीज बोलो तो गेहूं उग जाएगा। कभी हम ऐसे करते हैं, बाबा आपको 10 लाख रुपए देते हैं मुझे निरोगी काया दे दो, संभव है? हाँ, ये भी जानना चाहिए, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बीज बोते हो, गेहूं का बीज बोया तो गेहूं ही उगेगा, चमत्कार नहीं है? तब ये विधान कब बताता है? सिर्फ संगम पर पता चलता है और वो भाग्य विधाता स्वयं आकर के इस संगम पर ये ज्ञान देता है, तब संगम का इतना वैल्यू है। फिर भी बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा समय, 24 घंटे आपके पास, जितना समय आप अपने लिए यूज करो, 8 घंटा अपने लिए यूज करो, बिजनेस भी करो, सब कुछ करो, थोड़ा समय अगर आप तपस्या करते हो तो बहुत जन्मों के पाप को भस्म कर सकते हो। उसके अंदर इतनी सहज एक विधि बताए बाबा ने, बच्चे संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, फिर भी आप 108 की माला में आ सकते हो, सिर्फ एक काम करना है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं, गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, फिर भी आप 108 की माला में आ सकते हो। तो एक काम करो कि आपके आंखों के सामने कोई भी आता है, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो क्या दान करेंगे आप? अगर अभी कहेंगे दोनों जेब भी खाली है, हाथ भी खाली है, तो बाबा ने कहा बच्चे आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे से लेके दान करो, यूज मी, सिर्फ मैं संगम पर। तो बाबा ने कहा संगम पर मैं आता हूं किसके लिए? सिर्फ बच्चों के लिए आता हूं। अगर आप कहेंगे सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं, नहीं, तो वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जो भगवान को जानते हैं मानते उनका नाम है ब्राह्मण। फिर भी आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो एक बार ज्ञान सुन ले उसको ब्राह्मण कहेंगे? नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी में एक दफा एडमिशन लिया तो आप कॉमर्स कॉलेज में एडमिट हो गए, हो गया, आप कॉलेज में जाओ या नहीं जाओ चलेगा। तो ब्राह्मण किसको कहते हैं वो भी जानना चाहिए। मिनिमम 3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम। अगर 3 अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है तो ब्राह्मण सो देवता बनता है, नहीं तो हम कहां हैं? कलयुग में ही है, शूद्र ही है, शूद्र से परिवर्तन। पहले अपने को शरीर समझते थे, शरीर माना 5 विकार है, काम क्रोध लोभ, किसी ने कुछ बोला तुरंत गुस्सा किया। अभी निर्वर भाई बोल रहे थे कि बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना, गलत शब्द बोलते हैं। अगर माँ बाप कहते बच्चे बिगड़ गए, अभी आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चे बुजुर्ग होने के बाद माँ बाप की सेवा नहीं करते, बच्चे बिगड़ गए, बच्चों को किसने बिगाड़ा? मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं, ये आंखों देखा हमने हमारे सामने। ऐसे में क्लास कर रहा था तो कहा कि माँ बाप क्या करते, बच्चों को बहुत मारते हैं, गुस्सा करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। तो ऐसे माँ बाप की सेवा बच्चे करेंगे? तो ऐसे में बता रहा था तो एक माताजी रोने लग गई। तो मैंने लगा माताजी क्यों रो रही है, मुझे लगा बीमार होंगी। हमने किसी माताजी को कहा माताजी वो देखो माताजी रो रही है, उनको आप देख लो। तो वो उठ के खड़ी हो गई, भाई जी मैं बीमार नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मुझे आज समझ में आया। क्या समझ में आया? मेरे 2 बच्चे हैं, शादी करके दिया हुआ है, एक दिन भी मेरे पास नहीं आते हैं, ना एक दिन भी मेरे से बात नहीं करते। क्यों? मैं सोच रही थी बच्चे बिगड़ गए हैं, आज समझ में आया। पति नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को उठा करके स्कूल में भेजना है, तैयार करना है, बच्चे उठते नहीं है, एक उठता है तो दूसरा सो जाता है। मैं बहुत मारती थी, बहुत गुस्सा करती थी, तो आज मुझे समझ में आया बच्चों को मैंने ही बिगाड़ा था। इसलिए कल भी गुलजार दादी ने एक बहुत अच्छा संकल्प दिया था कि कुछ छोड़ के जाओ। बाबा ने कहा बच्चे मुझे दे दो, मैं लेने आया हूं। इसलिए जब लौकिक में भी हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कोई बैंगन छोड़ के आता है, कोई और कुछ छोड़ के आता है, तो यहां क्या छोड़ेंगे? ये कौन सा सभा है? रूहानी सभा है। तो यहां शरीर की कोई बात नहीं है, आत्मा की है। आत्मा के अंदर जो 5 विकारों का प्रभाव पड़ा हुआ है, उसमें से एक चीज, अगर कल गुलजार दादी ने कहा था, अगर आज एक बाबा आ रहा है, क्यों आता है? बच्चों से कुछ लेने के लिए आता है और बच्चों को कुछ देने के लिए आता है ना? कुछ देना चाहिए। क्या देंगे आप? तो आज जितने सभा में इधर बैठे हैं, एक संकल्प करो कि बाबा ने कहा बच्चे कोई भी व्यर्थ दुख है आप मुझे दे दो। कल भी गुलजार दादी ने कहा था, कैसे देना चाहिए बाबा को? दिल से देना चाहिए। तो आप कहेंगे दिल से कैसे देंगे, ये दिल तो देता नहीं है, ये तो शरीर का दिल है, ये तो खून चलाता है। दिल बुद्धि का नाम है, दिल, इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। समझ, समझ बुद्धि के अंदर है। ऐसे नहीं बाबा मेरा गुस्सा ले लो, नहीं, समझ है। क्या समझ है? कि सोच लो एक मिनट बैठ करके, जिसको दान देने से पहले सोचना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था गुप्त दान है, तो एक मिनट पहले सोच लो ये गुस्सा मुझे कितना दुख देता है, ये गुस्से से मेरे जीवन में क्या प्राप्ति है, गुस्सा करने से मेरे जीवन में क्या नुकसान है, गुस्सा करने से मुझे क्या क्या नुकसान होगा, शरीर के अंदर कितना नुकसान है, मैं भगवान का श्रीमत मैंने नहीं माना, उससे भी दूर हो गया, और जिसके ऊपर मैं गुस्सा करता हूं सारा कलप के लिए उनके साथ मैं दुश्मन बन गया। मैं दुश्मनी मिटाने आया हूं, बनाने नहीं आया हूं। तो ये अच्छी तरह से आप सोचकर समझकर, और बाबा कौन? सर्वशक्तिवान है, उसके साथ ठगी नहीं चलेंगे। आज दे दो कल वापस ले लो, है ना? तो वो कौन है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो वो कौन है, कहां है वो? वो आज निराकार मेरे सामने आएगा। उस समय बाबा देखना, बाबा आने के बाद 5 मिनट इस कोने से इस कोने तक हर एक को दृष्टि देता है, हर एक का संकल्प कैच करता है। जब बाबा आने के बाद आप देखना, आपके तरफ कहीं भी बैठो आप, आपके तरफ बाबा की दृष्टि आई, वहां बैठे बैठे बाबा ये आप आए हो एक क्रोध ले जाने के लिए, ये क्रोध ले जाओ, ये क्रोध मैं आज स्वाहा करता हूं, आज के बाद कभी भी मैं कितना भी 10 लाख रुपए का नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। ये व्रत शिवरात्रि पर व्रत रखते भक्ति में भी, तो जानना चाहिए भक्ति में भी व्रत रखते हैं। क्या व्रत रखते हैं कि कुछ छोड़ के आते हैं, तो वहां भी एक रात एक दिन 24 घंटे कुछ खाते नहीं पीते नहीं। तो यहां भी हमें याद होना चाहिए कि एक दिन के लिए व्रत रखो कम से कम, कि यहां अच्छी तरह से बाबा के सामने अगर आप प्रतिज्ञा करते हो कि हम यहां से जाने के बाद कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। अगर एक का दान देते हो, बाकी 4 विकार अपने आप बाबा ले लेता है रिटर्न में। तो एक क्रोध क्या है, बाबा ने भी कहा था कि स्वयं को भी जलाता है औरों को भी जलाता है, डबल काम करता है। तो इसके लिए हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते हो। तो एक अगर आप बाबा आता है तो बाबा को कुछ देना भी पड़ेगा ना, उससे कुछ लेना चाहते हो, कुछ देना भी है जो हमको दुख देती है, तो वो चीज दे दो। इसलिए शिव के लिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते, क्योंकि खुशबू भी नहीं है, है ना, कोई काम का नहीं है। तो जो हमारे जीवन में खराबी है, दुख है, अशांत करता है परिवार वालों को भी, स्वयं को भी, सबको दुख देने वाले एक चीज है क्रोध, और वो हमारे हाथ में है। अगर आज आप प्रतिज्ञा करो, बाबा आप और हम सब बच्चों को ऐसी शक्ति देगा कि बच्चे क्रोध मुक्त होके इस हॉल से बाहर जाएंगे। मंजूर है, करना चाहते हो? कुछ दान भी देना पड़े, ये संगम युग की विशेषता है, इस संगम पर ही आप कर सकते हो, कल नहीं कर सकते हो। अगर आपको कल करेंगे हम पता नहीं क्यों, आज स्वयं भाग्य विधाता हमारे सामने है। तो आज शाम को ऐसी तपस्या करो कि हॉल में आने के बाद बिल्कुल साइलेंस होके बैठो, नहीं तो आवाज बहुत होता है, एक दूसरों से बात करते रहते हैं। कोई लोग ऐसा है, साइंस कहता है 2 थिंग्स कैनॉट बी डन एट द सेम टाइम, 2 काम एक साथ नहीं होती है। हम चाहते भगवान से भी मिलते रहे और फोन से बात करते भी रहे, है ना, तो उसके कारण आप भगवान से भी दूर होते हो और दूसरों का तकदीर भी बिगाड़ देते हो। दूसरा बहुत श्रद्धा से बैठा है, सुनता है, उसको भी आवाज डिस्टर्ब करता है, इसलिए 2 काम साथ में नहीं होती है। तो हम एक लक्ष्य लेके आए, जैसे बच्चों को भी स्टूडेंट को भी कहते हैं, बच्चे गिव अटेंशन, ध्यान देके पढ़ो, स्कूल में हम पढ़ने के लिए आए हैं। और ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सिर्फ भावना नहीं, समझ चाहिए। हम किसके लिए आए, पतित से पावन बनने के लिए आए, तो कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आज शाम को आप बिल्कुल साइलेंस में बैठो, जहां आपको जगह मिला, बड़े बड़े स्क्रीन है, स्क्रीन पर अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आप अव्यक्त स्थिति में बैठते हो, अपने को आत्मा समझकर, आप देखना जब शिव बाबा प्रवेश करता है, आप गुलजार दादी के भ्रकुटी में देखते रहना, देखना सफेद चमकता हुआ सितारा आपको दिखाई देगा। कैसे भगवान आता है कि सबको लगता है भगवान दिखाई देगा, हाँ कौन देखेगा? आपको पता होना चाहिए गीता में सिर्फ अर्जुन अकेला ही देख सकता था, इतने अक्षौहिणी सैनिक थे, कोई भी देख नहीं सकता था। जो अव्यक्त स्थिति में रहेगा, जो अपने को आत्मा समझ के यहां बैठेगा, क्यों कि रूहानी मिलन है, शरीर भान में नहीं। तो इधर आने के बाद आप आते बिल्कुल साइलेंस, कोई आवाज नहीं, किसी से मोबाइल का फोन है तो घर कमरे में रख के आओ, बंद करो, साइलेंस में बैठो बिल्कुल, और ये चिंतन करो मैं कौन, मैं आत्मा, किससे मिलने आया हूं। गुलजार दादी को तो आपने कल देखा, सुना भी। आज किसको देखना चाहते हो कि गुलजार दादी के ब्रकुटी के बीच में बाप दादा दोनों आने वाले हैं। कहां बैठेंगे? ब्रकुटी के बीच में बैठेंगे। तो आपकी नजर कहां होंगी? किसको मिलना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो? तो ये निश्चय करो, आने के बाद इधर देखा उधर देखा, कोई आए गए, आए थे कुछ करने के लिए और जाते समय क्या करके गए? खाली हाथ गए। फिर कहेंगे बाबा का अनुभव नहीं हुआ। बिना कुछ किए हुए कुछ मिलता नहीं है। कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ करो कि आप बैठते ही अंदर हॉल में आते ही आराम से आओ, फ्री होकर के आओ, कोई बंधन नहीं रखो और बैठते आत्मा का चिंतन करते रहो, मैं कौन और मुझे किससे मिलना है। एक निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों, बाप दादा दोनों इनके प्रकृति में आएंगे। तो आपकी नजर, अर्जुन को भी कहा था कि मछली के आग को तीर मारना है, उसको कहा ध्यान। आप यहां बैठे हुए आपका ध्यान कहां है, एकाग्रता कहां है? अगर आप ध्यान से बैठते हो, देखना इतना अच्छा अनुभव कर सकेंगे आप कि ध्यान के बिगैर अनुभव नहीं होगा। तो आने लक्ष्य लेके आए हैं उसी लक्ष्य को, और सारे कल्प के अंदर एक ही मौका है, बार बार नहीं मिलता है। तो इस मौके को आप ऐसे ही गवाना नहीं, ठीक है? संगम युग की महिमा समझ में आया, क्या करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। अगर अभी नहीं किया तो सारे कल्प में, आज बाबा ने कहा कल्प कल्प नहीं मिलेगा। तो एक कल्प में अगर करते हो, नूंद हो जाती है, वही रिपीट होता है। तो इस कल्प में आप ये नूंद करो कि एक मुझे छोड़ना है और एक बाबा का अनुभव करना है। ओम शांति।
सुहाने पल है जिंदगी, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं।